हरे कृष्णा। आज हमारा टॉपिक है बिग बैंग और बिग ब्लफ। तो ये टॉपिक इसलिए रखा गया है, विशेष रूप से एक साइंटिस्ट लोगों का प्रयास चल रहा है कि इस सृष्टि के निर्माण को समझने के लिए एक प्रयास चल रहा है कि कैसे सृष्टि बनी है। तो इस विषय को हम लोग डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए। तो सामान्य रूप से वैज्ञानिक गण जिस प्रकार से इस पूरी सृष्टि के सृजन को समझाने का प्रयास करते हैं, सामान्यतया उसका एक आधारभूत लक्षण है कि अल्टीमेटली सब कुछ जो भी एग्जिस्ट करता है वो अंततः केवल जड़ पदार्थ हैं, जो एक भौतिक नियमों से बंधे हैं। और इसी प्रकार से सारा जगत जो भी हम देखते हैं कार्य करता है, इसके अलावा पदार्थों से अलग कोई और चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। आत्मा यानी कि जो एक जीवित व्यक्ति है वो मात्र जड़ पदार्थों का एक पुतला है, और जो जीवन के लक्षण हैं वो जड़ पदार्थों के अंतर्गत जो नियम हैं, जो जड़ पदार्थ जिनके अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हीं नियमों का फल है कि वो जीवंत लगते हैं। सामान्य शब्दों में कहें, सृष्टि के पीछे कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। ये जगत भौतिक पदार्थों का बना है और ये पदार्थ हमेशा से किसी न किसी रूप में रहे और अपने आप ये आज के इस रूप में है, दैट्स इट। यानी कि इसका निचोड़ ये है इस तथ्य का कि अंततः इस सृष्टि के पीछे कोई नियमों से अलग और कोई हेतु नहीं है। मात्र नियम है लेकिन इस सृष्टि के बनाने के पीछे इससे कुछ प्राप्त करना, क्योंकि कोई बनाने वाला ही नहीं है, तो इसलिए इसका कोई विशिष्ट हेतु नहीं है। और यही बात फिर हम लोगों के ऊपर भी लागू होती है कि आदमी भी उसी प्रकार से एक मशीन है अंततः, और इसीलिए उसका भी कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। और ये जो हम सुख दुख ये जो भी अनुभव कर रहे हैं, प्रेम इत्यादि, ये सब चीजें केवल मात्र एक कुछ अल्टीमेटली भ्रम है, इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अंततः उसका कोई विशेष, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, सुखी होने का, दुखी होने का, या कोई इच्छा, सुखी रहने की इच्छा, ये सब मात्र एक टेम्परेरी अभिव्यक्ति है, पदार्थ के कारण ऐसा उत्पन्न होता है, दैट्स इट। तो इसको समझाने के लिए जो बिग बैंग का थ्योरी है उसको यूज किया जाता है समझाने के लिए कैसे ये सृष्टि बनी है, निर्मित हुई है। तो ये टॉपिक थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिया जाएगा, इसलिए शुरू करने से पहले हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि जो हमारे ऑडियंस हैं वो लोग किस स्तर पर समझते हैं बिग बैंग को, और ये जो प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग समझा सकते हैं। तो क्या आप में से कुछ लोग बताना चाहेंगे, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज मीन बाय दिस बिग बैंग थ्योरी, और ये जो परिष्करण चल रहा है अभी, ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है और उससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है, और उसका रिजल्ट से क्या कंक्लूजन वो लोग निकालने वाले हैं। आप केवल क्लास के बाद में बोलिएगा, बाहर उसके बीच में नहीं। ओके, इट्स ओनली फॉर यू, सॉरी यू आर कमिंग एवरी टाइम, बट आंसर्स एंड क्वेश्चंस आर ऑल इन सच ए वे विच डिस्टर्ब द होल क्लास. सॉरी टू से दिस. सो यू आस्क क्वेश्चन इन द लास्ट एंड आंसर ओनली इन द लास्ट. या बट एक्सेप्ट यू. सॉरी. यस यस. ओके. तो ये जो वर्तमान एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसमें वो क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली, इसके बारे में जानता है कोई? आप समझ रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी जिनीवा में जो, तो उसमें एग्जैक्टली क्या करने का प्रयास कर रहे हैं वो? एक मिनट. ओके बोलिए. एक मिनट. यस. ओके. तो इस एक्सपेरिमेंट से वो लोग कुछ मैटर और एंटी मैटर्स कुछ क्रिएट हुए देख रहे हैं. ओके ओके. यस.
मैटर वो लोग ढूंढना चाहते हैं जो क्रिएटर था पहले, सबसे पहले.
क्रिएटर मींस
जिसके वजह से जहां से बिगनिंग हुआ.
हाँ, मतलब स्टेप में, इनिशियल स्टेप्स में जो मैटर प्रोड्यूस हुए. हम मैटर को क्रिएटर नहीं कह सकते क्योंकि क्रिएटर मीन्स इट रेफर्स टू समबडी हु थिंग्स एंड डज. लेकिन शुरू की स्टेज में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ वो देखना चाहते हैं. वुड यू लाइक टू टेल समथिंग? ओके. इज अ साइंटिस्ट इन इसरो. सो आई थॉट समथिंग. एनीवे, सो व्हाट आई हैव स्टडीड अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, वो लोग हिग्स बोसोन फाइंड आउट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. थ्योरी के अनुसार जो बिग बैंग जो स्पेक्यूलेशन है, ऐसा सोचा गया है कि जब बिग बैंग हुआ उसके पहले कुछ क्षणों में, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स के अंदर कुछ नहीं था, मैटर नहीं था, स्पेस नहीं था. स्पेस एंड मैटर स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट. तो पहले कुछ क्षणों में जो पार्टिकल्स इवॉल्व हुए उसमें से एक है हिग्स बोसोन. तो ये सब क्या है? बहुत छोटे छोटे कण हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के भी बहुत छोटे छोटे भाग, जिनको बेसिकली दो वैरायटी हैं उनकी. एक है मास के पार्टिकल जिनको फर्मियंस बोलते हैं, और दूसरा है फोर्स कैरिंग पार्टिकल, शक्ति जिससे प्रवाहित होती है ऐसे कण, जिनको बोसोन बोलते हैं. तो अभी उसमें भी क्वार्क और लेप्टॉन, ये दो प्रकार के फर्मियंस हैं, और इधर बोसोन के अंदर डब्ल्यू वाई बोसोन, और फिर और दो प्रकार के इस प्रकार. तो ये हिग्स बोसोन एक पार्टिकल है जो उनका एस्टिमेशन है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कि यदि हम जो बिग बैंग के समय में जो सिचुएशन था, यानी कि इन्फिनिटिसिमल पॉइंट, बहुत इन्फिनिटिसिमल पॉइंट, एक्चुअली व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली, मीन्स जहां पर जो कर्वेचर है उसका, उसकी रेडियस जीरो हो. यानी कर्वेचर कितना हो गया? 1/r, दैट इज इनफाइनाइट. तो दैट सिचुएशन इज इम्पॉसिबल टू अचीव. लेकिन उसके कुछ क्षण बाद की सिचुएशन क्रिएट हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बहुत छोटी जगह पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो, एनर्जी हो, वेरी हाई एनर्जी लेवल्स, वेरी स्मॉल स्पेस, हाई टेम्परेचर, तो ऐसा जब सिचुएशन आता है तो उसमें पार्टिकल्स क्रिएट होना शुरू होते हैं, वहां से डेवलप होना शुरू होते हैं। तो उनकी इक्वेशंस के अनुसार अगर हम उसको एक स्टेप पीछे जाएं, तो जिस टेम्परेचर पर जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे जो टेम्परेचर उत्पन्न होगा उससे हिग्स बोसोन पार्टिकल्स डेवलप होने चाहिए, निकल के आने चाहिए। तो अगर वो आते हैं, इफ दे मैनिफेस्ट, दैट मीन्स कि वैज्ञानिक गण जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, जो उनकी कैलकुलेशंस हैं कि बिग बैंग से सब किस प्रकार से हुआ है, वो कैलकुलेशंस को सहारा मिलेगा कि यस वी आर थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन। तो स्टीफन हॉकिंग्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इज कंसिडर्ड टू बी टूडेज आइंस्टाइन। तो उनके अनुसार इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ वो तो बहुत बड़ी बात है इसको समझना, लेकिन इससे बेसिकली हम क्या समझेंगे कि यदि वो पार्टिकल नहीं निकला जो हम सोच रहे हैं, तो कम से कम ये जरूर पता लग जाए कि जिस डायरेक्शन में हम लोग सोच रहे थे बहुत सालों से, 40-50 साल से, वो गलत था। जिस डायरेक्शन में सोचते आ रहे थे दैट डायरेक्शन इज रॉन्ग, एटलीस्ट यानी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, उसका रिजल्ट ना मिलने से ज्यादा पता लगेगा, उसके मिलने से इतना पता नहीं लगेगा। और उसके बावजूद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, आप जानते हैं कि वो शुरू किया लेकिन अभी इट्स नाउ स्टॉप्ड ऑल्सो, कुछ समय के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है फॉर मैनी मंथ्स लाइक दैट। तो हाँ, अल्टीमेटली इस एक्सपेरिमेंट से इट्स नॉट दैट दे आर गोइंग टू रीच दैट पॉइंट ऑफ बिग बैंग जिसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं। इट्स अ सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी मतलब ऐसे सिचुएशन जो मैथमेटिकली फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल है अभी हमारे वर्तमान के नियमों से, तो स्वाभाविक है कि हम वो स्थिति को कैसे क्रिएट करेंगे। जब हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं तो उसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट वो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए नहीं है, बिग बैंग की वो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए नहीं है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सो कॉल्ड बिग बैंग जो सोचा गया है उसके कुछ समय बाद की स्थिति क्या होगी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। नॉट एवरीबडी मे बी फॉलोइंग इट, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज मच इज पॉसिबल। बिग बैंग दैट सिचुएशन अल्टीमेट ओरिजिन इज नॉट पॉसिबल स्टिल टूडे, लेकिन उसके कुछ समय बाद की स्थिति के नजदीक आने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टिकल एक्सेलेरेटर है और उससे उसके टकराने से बहुत हाई टेम्परेचर, लाइक इवन मोर देन सन टेम्परेचर, मोर देन सन दे आर एक्सपेक्टिंग टू क्रिएट, और उस हाई टेम्परेचर पर वो पार्टिकल आना चाहिए। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सो नाउ इस बैकग्राउंड के साथ वी विल जस्ट ट्राई टू सी व्हाट इज दिस बिग बैंग थ्योरी ऑल अबाउट। वर्तमान जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो बिग बैंग थ्योरी को प्रूव नहीं करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इन फुल सेंस, सम पार्ट। तो क्या है ये बिग बैंग थ्योरी, क्या इसके अंडरस्टैंडिंग है? तो साइंटिस्ट लोगों ने हबल ऑब्जर्व किया कि हमारा जो यूनिवर्स है ये इट इज एक्सपेंडिंग, जो गैलेक्सीज हैं, जो स्टार्स हैं, उनकी पोजीशन, दे आर एक्सपेंडिंग, दे आर गोइंग फार्दर अवे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दे आर फार्दर अवे। तो उस आधार पर ये पोस्टुलेट किया गया कि दैट मीन्स ये पूरा हमारा यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, दैट मीन्स इट मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट। तो फिर अभी विचार किया गया, तो हाउ टू एक्सप्लेन कि वो स्टार्टिंग पॉइंट कैसा रहा होगा, उसकी इक्वेशंस क्या रही होंगी, और उसके बाद अलग अलग स्टेप्स की क्या इक्वेशन रही होंगी, कैसे मैटर बना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, स्टार्स गैलेक्सीज कैसे बने, और उसमें उसको समझाने का प्रयास किया गया। तो उसको समझाने के लिए हमारी एग्जिस्टिंग जो फिजिकल थ्योरीज हैं उनको यूज किया गया। तो एक तो है न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन लॉज, क्लासिकल फिजिक्स। तो क्या है न्यूटन फिजिक्स? अगर कोई ये चीज है इसको हम लोग एक वेलोसिटी से धकेलते हैं, तो अगर हम लोग टोटल फोर्स जो इस पर अप्लाई कर रहे हैं उसको जानते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज दैट फोर्स. सो जो हमारे न्यूटन लॉज हैं उसके अनुसार वी विल बी एबल टू प्रिडिक्ट कि ये ऑब्जेक्ट कितने समय बाद कितना दूर गिरेगा. तो उस प्रकार से न्यूटन फिजिक्स के लॉज काम करते हैं. लेकिन न्यूटन फिजिक्स की बहुत सारी लिमिटेशन धीरे धीरे पता लगी कि देखा गया कि जो लाइट है, अभी जैसे एक उदाहरण लें, ट्रेन के अंदर आप चल रहे हैं और आप एक ये फेंकते हैं, ठीक है, तो आपके अनुसार जो आप ट्रेन में बैठे हैं आपके अनुसार ये ऑब्जेक्ट आपने ऐसे गिरा तो क्या ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा? नहीं करेगा, छोड़ दिया, हमें नहीं करेगा, उसी पॉइंट पे गिरेगा. आप बेंच पे बैठे हुए हैं, आप इसे गिराएंगे तो एग्जैक्टली बेंच पर वहीं गिरेगा, करेक्ट. तो अभी जो ऑब्जर्वर बाहर है ट्रेन के बाहर, वो यदि देख रहा है ऑब्जेक्ट को गिरते हुए, उसके अनुसार ऑब्जेक्ट वहीं गिर रहा है या अलग डिस्टेंस अलग जगह पे गिर रहा है? अलग डिस्टेंस पे गिरेगा, करेक्ट. अभी जो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर है उसके अनुसार जो टाइम है छोड़ने से लेकर के जमीन को टच करने का टाइम, ट्रेन का फर्स्ट टच करने का टाइम, सपोज दैट टाइम इज से T1, और जो बाहर है ट्रेन के बाहर वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, उन दोनों में कोई डिफरेंस होगा? तो टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होगा लेकिन डिस्टेंस कवर्ड में डिफरेंस होगा. ओके, सो ये न्यूटन के लॉ के अंतर्गत इस प्रकार से टाइम जो ये अलग अलग रेफरेंस है उसके अनुसार ये होगा. एंड वी कैन प्रिडिक्ट यूजिंग द न्यूटन लॉज, वी कैन प्रिडिक्ट जो आदमी ट्रेन के बाहर है ही कैन प्रिडिक्ट, और जो ट्रेन के अंदर ही क्या हो सो प्रिडिक्ट कि जो बाहर वाला आदमी बैठा है उसके अनुसार कितना डिस्टेंस कवर करेगा. यू कैन कैलकुलेट मेरी ट्रेन इज मूविंग बाई दिस वेलोसिटी, सो ये ऑब्जेक्ट जब मैं गिरा रहा हूँ सो इट इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस मच, सो इट विल फॉल दिस मच अवे फॉर द ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन. ओके, लेकिन अभी देखा गया कि जो लाइट है, लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है. लाइट के केस में जो ट्रेन के अंदर आदमी बैठा है, इफ ही इज थ्रोइंग लाइट, जो वेलोसिटी लाइट की ट्रेन के अंदर से दिखती है और जो बाहर से दिखती है, दे आर सेम. लाइट की जो है इट्स हैविंग एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इट इज नॉट चेंजिंग विद रेफरेंस टू द ऑब्जर्वर. जैसे यहां पर हमने देखा कि डिस्टेंस मूव्ड, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मूव्ड अलग अलग था, लेकिन लाइट के केस में एक जो बाहर ऑब्जर्वर है और जो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर है, दोनों ही केस में लाइट मूव्स इक्वल डिस्टेंस, यानी लाइट की अपनी वेलोसिटी है, इट्स एब्सोल्यूट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस वेलोसिटी. मैं ट्रेन में जा रहा हूं 30 किलोमीटर की स्पीड से एंड देन आई थ्रो ए लाइट, तो इट शुड बी एडेड, लाइट की वेलोसिटी में एड होना चाहिए, करेक्ट. जैसे इस ऑब्जेक्ट में ऐड हुआ, मैंने इसको जीरो वेलोसिटी से गिरा लेकिन ट्रेन चल रही थी 30 किलोमीटर की से, तो ऑब्जेक्ट को वो वेलोसिटी मिल रही थी इसलिए इट कवर्ड ए डिस्टेंस, करेक्ट. लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है. लाइट के केस में जो भी आप वेलोसिटी से फेंकेंगे, द मोमेंट यू स्टार्ट इट हैज इट्स ऑन वेलोसिटी एंड दैट्स इट, इट हैज इट्स ऑन वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी. तो ये ऑब्जर्वेशन न्यूटन फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया सकता था, इसलिए फिर आइंस्टाइन केम अप विथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अंदर उसने इक्वेशंस दी कि कोई भी इवेंट के लिए डिस्टेंस और टाइम ट्रेवल्ड हम इन इक्वेशन से पता लगाएंगे, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज वन ऑफ द फैक्टर, और आप किस गति से चल रहे हैं दैट इज अ फैक्टर. सो अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्मॉल वेलोसिटीज, जैसे ट्रेन है हम लोग जा रहे हैं, लाइट की वेलोसिटी कितनी है पर सेकेंड? ओके, तो जब तक मूवमेंट्स हमारी जो डे टू डे लाइफ में जो हम देखते हैं मूवमेंट, वो इस स्पीड से नहीं होते ना, तो उस केस में चलता है, न्यूटन फिजिक्स कैन ऑल्सो वर्क। लेकिन जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब ऑब्जेक्ट्स लाइट की स्पीड से चलते हैं, तो वहां पर न्यूटन फिजिक्स डज नॉट वर्क, न्यूटन लॉज डज नॉट वर्क। तो इस प्रकार से न्यूटन फिजिक्स वॉज रिप्लेस्ड बाई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड न्यूटन फिजिक्स इज अ स्पेशल केस ओनली एप्लीकेबल वैन स्पीड इज वेरी लेस कंपेयर टू लाइट। नाउ देन न्यूटन आई मीन आइंस्टाइन देन फर्दर ही सॉ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो बाकी फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि चार्जेस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वो एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स में ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशन फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके चारों तरफ इट विल बी इक्वली प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट, एंड इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी न्यूट्रल, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, एनीथिंग, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सो न्यूटन आइंस्टाइन थॉट केम अप विद आइडिया कि ग्रेविटेशन फोर्स हैज टू डू समथिंग विद स्पेस एंड टाइम। तो अभी तक जो न्यूटन फिजिक्स था और जो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी था आइंस्टाइन का, उसमें जो टाइम और स्पेस था वो इवेंट से उसका कोई लेन देन नहीं था। टाइम एंड स्पेस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड इवेंट इज हैपनिंग एंड यू कैन कैलकुलेट द टाइम इलैप्स्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट्स इट। लेकिन आइंस्टाइन जब ये देखा कि वो ग्रेविटेशन लॉ इज डिफरेंट, देन एक्चुअली ही केम अप विद आइडिया कि स्पेस एंड टाइम आर नॉट टू सेपरेट एंटिटी, रादर दे आर वन एंटिटी। स्पेस एंड टाइम इट्स एक्ट्स टुगेदर, और एक्चुअली जो भी इवेंट हो रही है स्पेस और टाइम में, दैट ऑब्जेक्ट द इवेंट इज अफेक्टिंग द स्पेस एंड टाइम, और स्पेस एंड टाइम इन टर्न इज अफेक्टिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इफ आई कैन ड्रॉ सम डायग्राम्स टू मेक इट समवॉट आई विल बी हियर सुनाई दे रहा है। तो आइंस्टाइन के अनुसार ये जो स्पेस टाइम है जनरली, स्पेस एंड टाइम हाउ वी थिंक इज दैट दिस इज अ एक्सिस जिसपे डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग थ्री एक्स वाई एंड जेड, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल थ्री इन दिस डायरेक्शन, और ये है कि टाइम एक्सिस। हम कोई भी इवेंट डिस्क्राइब करते हैं टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस। लेकिन न्यूटन ने क्या प्रपोज किया, टाइम एंड स्पेस आर नॉट इंडिपेंडेंट वेक्टर, रादर टाइम एंड स्पेस इज वन वेक्टर कंबाइंड इंटरव्यू। तो यानी कि जो टाइम और स्पेस है इट्स लाइक फोर डायमेंशनल थिंग, थ्री डायमेंशन, देन देयर इज टाइम, और हर एक्सिस में टाइम एंड स्पेस इज कंबाइंड वेक्टर, इट्स नॉट सेपरेट, इट्स कंबाइंड। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर नॉट इन फिजिक्स, मे बी डिफिकल्ट फॉर दिस। तो उसने प्रपोज किया है कि अल्टीमेटली टाइम एंड स्पेस इज लाइक इंटरव्यू, जाले की तरह से कंबाइंड, अलग अलग नहीं। कभी फोर डायमेंशनल को हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इट्स वी कैन विजुलाइज फोर डायमेंशन, करेक्ट। हम लोग तीन डायमेंशन देख सकते हैं, लेंथ हाइट एंड ब्रेथ देख सकते हैं, लेकिन फोर डायमेंशन वी कैन नॉट विजुलाइज। तो इसलिए सपोज फोर डायमेंशन को हम लोग कंप्रेस करते हैं टू डायमेंशन में, एंड
make it like a
वो होता है ना आपका graph paper,
something like that. तो अभी now suppose there is one line in this graph और एक end जो है वो crawl कर रही है इस end से इस end. तो वो जो है straight line में जा रही है, correct? Now suppose this graph is bent. आपके graph paper को ऐसे bent करते हो.
ऐसे मोड़ दिए ग्राफ पेपर. अभी जो चीटी चल रही है उस ग्राफ पेपर पे, सो अकॉर्डिंग टू द लाइन जो ग्राफ पर है उस लाइन के अनुसार अभी भी वो स्ट्रेट लाइन नहीं चल रही है, बट अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके, सो नाउ दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. This is the shortest distance, but as per the graph, this is the short. This is the shortest distance for that ant who is crawling. So it's walking in the straight line.
So इस प्रकार से ये time and space curvature है. तो जब massive objects होते हैं,
जैसे कि Earth,
तो now suppose this is some I can show you some diagram.
Actually, we thought of doing a projector, but somehow we couldn't.
Like this. There is a sun, and there is a sun and there is earth. So. ग्रेविटेशन लॉ को क्या समझते हैं कि सन इज पुलिंग द अर्थ,
बट न्यूटन आइंस्टीन एक्सप्लेन इट्स नॉट लाइक पुलिंग, रादर सन की वजह से जो स्पेस टाइम है उसमें बेंट हो गया. इट इज बेंट, सो इट हैज बिकम अ कर्व. इट्स बेंट एंड देयरफॉर
वो बेंट होने की वजह से अर्थ जो एक्चुअली इट इज मूविंग
इन स्ट्रेट लाइन, इट अपीयर्स टू बी moving in curves, and because of that curvature everything tends to be pulled towards sun. Lekin vastav mein koi force nahi hai, it is just the time space curvature is there and because of that everything seems to be moving towards sun. So ye general relativity theory
Einstein ne diya.
Now agar बिग बैंग को एक्सप्लेन करना है वो स्मॉल पॉइंट से जहां से सब कुछ निकला है, तो वहां पर इट्स ए वेरी हाई डेंस, बहुत डेंसिटी है उस समय. तो ऑफ कोर्स जो स्पेस टाइम कर्व है वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन. तो इस अंडरस्टैंडिंग से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो निकल के आया वो स्टीफन हॉकिंस उसको उसको इस प्रकार से बताते हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन. Before 1915, space and time were thought of as a fixed arena in which events took place, but which was not affected by what happened in it. This was true even of a special theory of relativity. Bodies moved, forces attracted and repelled, but time and space simply continued, unaffected. It was natural to think that space and time went on forever. The situation, however, is quite different in the general theory of relativity. Space and time are now dynamic quantities. Space and time are now dynamic quantities. They are changing with the events. When a body moves or force acts, it affects the curvature of space and time. And in turn, the structure of space and time affects the way in which bodies move and forces act. Space and time not only affect, but are also affected by everything that happens in the universe. Just as one cannot talk about events in the universe without the notions of space and time, हम time और space के बिना क्या घट रहा है उसके बारे में बात नहीं कर सकते. So in general relativity, it became meaningless to talk about space and time outside the limits of universe. Universe के beyond टाइम एंड स्पेस इज नॉट एग्जिस्टिंग. हम कह रहे हैं यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, यानी स्पेस वहीं से शुरू हुआ, टाइम वहां से शुरू हुआ. तो हम लोग उसके बियॉन्ड बात नहीं कर सकते. वी हैव टू स्टार्ट द टाइम एंड स्पेस स्टार्ट्स हैज टू स्टार्ट विद दैट बिग बैंग, विद द ओरिजिन, विद द ओरिजिन. तो ये समझ के तो यानी कि हम जो वर्तमान में जो हमारा स्पेस टाइम का अंडरस्टैंडिंग है, दैट अंडरस्टैंडिंग विल बी अफेक्टेड एवरी मोमेंट. जैसे जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, हर पॉइंट पर जो स्पेस टाइम कर्वेचर है वो अलग अलग होगा. इसीलिए वी हैव टू हैव सेपरेट इक्वेशंस फॉर ईच एंड एवरी टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल टुडे. अलग अलग समय पर क्या क्या स्पेस एंड टाइम की सिचुएशन, इट इज नॉट सेम. आज जो स्पेस और टाइम है इट इज नॉट द सेम एज बिग बैंग के टाइम पर. सो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस विल बी गवर्निंग दैट. ओके, नाउ इस हिसाब से देखा जाए तो अगर स्पेस और टाइम की इक्वेशन दी जाए स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो क्या इक्वेशन बनेगी स्टार्टिंग पॉइंट पर स्पेस एंड टाइम के लिए? तो जो कर्वेचर होगा, स्पेस टाइम कर्वेचर, स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स इन्फिनिटिस्मल, बहुत छोटा पॉइंट होगा. तो बहुत छोटा मीन्स रेडियस विल बी इक्वल टू टेन टू इक्वल टू जीरो. सो वॉट विल बी द कर्वेचर? कर्वेचर इज डिफाइंड एज वन अपॉन आर. ओके, तो कर्वेचर कितना हो जाएगा? इन्फाइनाइट हो जाएगा. कर्वेचर इज इन्फाइनाइट, इन्फिनिटिस्मल पॉइंट, कर्वेचर इन्फाइनाइट, डेंसिटी इन्फाइनाइट, टेम्परेचर इन्फाइनाइट. तो हमारी जो प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है ग्रेविटेशन लॉज और जितने भी फोर्सेज करते हैं, वी कैनॉट एक्सप्लेन दैट पॉइंट, वी कैनॉट अंडरस्टैंड वॉट हैपन्स एट दैट पॉइंट. इसीलिए उसको बोला गया इट्स ए सिंगुलैरिटी. सिंगुलैरिटी मीन्स वो सिचुएशन विच कैनॉट बी एक्सप्लेन विद द प्रेजेंट फिजिकल लॉज. ओके, दैट्स वन प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच सो फार देर इज नो सोल्यूशन टू इट. नाउ सेकेंड थिंग इज जो स्टार्टिंग कुछ फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसमें द मास इज इन द फॉर्म ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो ये जो न्यूटन फिजिक्स है या आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, बोथ जनरल एज वेल स्पेशलाइज्ड, जब देखा गया कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और फर्दर लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, दे डोंट फॉलो relativity, I mean theory of gravitation, they are not having this gravitational pull. Subatomic particles mein wo jo laws of gravitation, they don't act there. To uske movements ko explain karne ke liye another theory came into existence which is known as subatomic particles ke movements ko explain karne ke liye kaun si theory hai? Hai? Quantum physics. So quantum physics is it explains small particles. So quantum physics के अनुसार किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का पोजिशन उसको डिस्क्राइब करना, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली. क्योंकि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टेट मीन्स पोजिशन एंड वेलोसिटी, दोनों चीज मिला करके स्टेट कहलाते हैं. वॉट इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एंड वॉट इज इट वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग. तो नाउ पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इज नाउ डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वर, ऑन द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन. हाउ इज इट? नाउ सपोज देर इज इलेक्ट्रॉन लाइन हियर. नाउ यू वॉन्ट टू नो वेर इज इलेक्ट्रॉन, तो आप कैसे पता लगाएंगे? थ्रू सम लाइट्स, यू विल थ्रो सम लाइट्स टू नो कहां पर है वो पार्टिकल. लाइट मीन्स फोटॉन्स, तो व्हेन यू विल थ्रो फोटॉन्स, दिस फोटॉन विल स्ट्राइक इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल डिस्प्लेस द इलेक्ट्रॉन. वो ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इट्स वेरी सब एटॉमिक, बहुत उसका कम मास है, तो ये जो आप फोटॉन्स यू आर थ्रोइंग, दिस इटसेल्फ विल डिस्प्लेस दिस, तो इट्स पोजिशन एंड वेलोसिटी विल चेंज. इसकी वेलोसिटी एंड पोजिशन विल चेंज. इसलिए क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वी कैन नेवर नो स्टेट ऑफ एनी सब एटॉमिक पार्टिकल फॉर श्योर. इसलिए फिर दिया गया हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इट इज इम्पॉसिबल टू नो द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट सेम टाइम. इफ यू नो द पोजिशन परफेक्टली यू डोंट नो द वेलोसिटी, इफ यू नो वेलोसिटी डोंट नो द, तो देयर इज ऑलवेज सम इनएक्यूरेसी इन दैट. इसलिए ये हुआ. तो अभी जो वो जो बिग बैंग के जो पहले कुछ क्षण हैं उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी क्वांटम थ्योरी की. ओके, तो नाउ वी नीड बोथ थ्योरीज. वी नीड जनरल रिलेटिविटी थ्योरी, स्पेस टाइम कर्वेचर, व्हाट इज द इक्वेशन एट दैट टाइम, और हमको जरूरत है क्वांटम थ्योरी. नाउ द प्रॉब्लम इज क्वांटम थ्योरी एंड ग्रेविटेशन थ्योरी बोथ डोंट मैच. दोनों में आपस में बहुत सी चीजें हैं विच यू एट द सेम टाइम बोथ कैनॉट वर्क. सो देन दिस वॉज अ बिग प्रॉब्लम. नाउ वॉट टू डू, वी नीड बोथ दिस थ्योरीज, और दोनों ही थ्योरी आपस में दे कॉन्ट्रडिक्ट. तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप वॉज, ठीक है, वी नीड ए यूनिफाइड थ्योरी. वी नीड ए थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन साइमल्टेनियसली बोथ दिस थ्योरीज. एक ऐसी जनरल थ्योरी चाहिए, एक ऐसी जनरल थ्योरी विच इज कॉल्ड यूनिफाइड थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी. ऐसी थ्योरी जो जो जनरलाइज थ्योरी हो जिसके अंदर ग्रेविटी थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी बोथ बिकम्स ए स्पेशलाइज थ्योरीज. ओके, सो फॉर पास्ट 50-60 ईयर्स, 50-60 साल से साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप दिस यूनिफाइड थ्योरी बट फेल्ड. So what Stephen Hawking has to say about this unified theory's attempts? This is Stephen Hawking. Up to now, most people have implicitly assumed that there is an ultimate theory that we will eventually discover. सब लोग ये सोचते आए हैं कि एक ऐसी कोई theory है जो theory of everything, which is also called theory of everything, TOE. Theory of everything, that is general theory which will explain quantum as well as gravity. Indeed, I myself have suggested we might find it quite soon. मैंने खुद भी बोला था कि जल्दी हम उसको शायद पता लगा लेंगे. However, M theory has made me wonder if this is true. So now, the recent understanding of science, M theory, there is one, M theory. उसके अनुसार Stephen Hawking is saying, एम थ्योरी के बाद मैं खुद भी शंका में पड़ गया हूं कि क्या वास्तव में कभी संभव हो पाएगा कि हम लोग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यूनिफाइड थ्योरी पता लगा पाएंगे. मे बी इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल टू नो. यू कैनॉट एक्सप्लेन दैट थ्योरी इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. वी एंड अवर मॉडल्स आर बोथ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वी आर डिस्क्राइबिंग. हम और जो मॉडल हम लोग बना रहे हैं वो सब इस यूनिवर्स का पार्ट है. ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सम पीपल विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ देयर इज नॉट एन अल्टीमेट थ्योरी दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड एज अ फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स. आई यूज्ड टू बिलोंग टू दैट कैंप बट आई हैव चेंज माई माइंड. तो जब हम ऐसा कोई विचार आता था कि कभी संभव ही नहीं हो पाएगा हमारे लिए एक्सप्लेन करना, ऐसी कोई थ्योरी बनाना जो सबको एक्सप्लेन कर पाए, तो स्टीफन हॉकिंग इज सेइंग आई यूज्ड टू फील वेरी डिप्रेस्ड. इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, इजंट इट? यू नो दैट यू विल नेवर बी एबल टू सक्सेस. इट्स लाइक दैट. बट आई एम नाउ ग्लैड दैट अवर सर्च फॉर अंडरस्टैंडिंग विल नेवर कम टू एन एंड. हमारी जो खोज है कभी खत्म नहीं होगी. इसका मतलब क्या है? हमारी खोज का तो कभी पूरी नहीं होगी. इसका मतलब क्या है? Not right now.
At that moment when you see,
never in the future also. We will never be able to understand. So, and that we will always have challenge to new discovery. Any one of you know about Gödel's theorem, mathematics Gödel's theorem? What is that? एक्सियम्स
कुछ डिसाइड कर दे रहे हैं कि कुछ ऐसे वो परिवर्तन है उससे कोई अफेक्ट करता है, लेकिन उसको जब दूसरे क्वेश्चन पूछे जाए कि तो बाद में वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए तो दूसरी थी ऐसे ऐसे आगे जाके
गुडल्स थ्योरम के अनुसार अगर हम कोई एक स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, मान लीजिए पांच स्टेटमेंट से वी आर डिस्क्राइबिंग सम स्टेट, देयर विल ऑलवेज रिमेन सम क्वेश्चन विच यू कैनॉट एक्सप्लेन बाय दोज स्टेटमेंट्स डिफाइनिंग दैट स्टेट। देयर विल ऑलवेज रिमेन वन क्वेश्चन जिसके लिए आपको एक और नया रूल लाना पड़ेगा। फिर जब नया रूल लाओगे तो देन नाउ यू हैव सिक्स रूल्स, अगेन देयर विल बी वन क्वेश्चन विच यू कैनॉट एक्सप्लेन बाय सिक्स रूल्स, देन यू विल नीड द सेवंथ रूल, देन यू विल हैव अ सेवन रूल framework, now you will have one question for which you need the eighth rule. So like that there will be never an end. जो Goodell था वो Einstein का contemporary था, he was a friend of Einstein. It's a very important conclusion in mathematics. तो इसके अनुसार a mathematician will always have work. That means he will never come to any final conclusion that this is that. Always there will be some question to be answered. That means they will never look. So Stephen Hawking is saying Goodell's theorem ensured there would always be job for mathematician. I think M theory will do the same for physicist. जो mathematician के लिए Goodell's theory ने किया, now M theory ने वो ही physicist के लिए कर दिया है. That means always there will be job for you. That means what? We will never be able to know by mathematics and physical laws explaining the whole universe. So this is what is the conclusion of Stephen Hawking, the topmost scientist today. Now ये सब आपको बहुत complicated लग सकता है, प्रतीत हो सकता है, ये complicated है भी और स्वाभाविक है भी है कि ये complicated भी होगा, क्योंकि ये पूरा सृष्टि, आप सोचिए ये छोटा सा माइक और ये छोटा सा रिकॉर्डर, complicated. एक layman से पूछें कि रिकॉर्डर कैसे काम करता है, उसको नहीं समझ में आएगा, आप बताएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट हो, क्योंकि इसको समझने के लिए उसे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इस रिकॉर्डर की वर्किंग को समझने के लिए उसे प्लस टू मिनिमम होना पड़ेगा, प्लस टू और उसके बाद भी ग्रेजुएशन बीएससी, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू स्टडी अनलेस ही नोज बेसिक्स ऑफ, आफ्टर दैट ऑल्सो विल नीड प्रैक्टिकल नॉलेज, मीन्स इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड. ओके, नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स, तो हम सोच सकते हैं कि यूनिवर्स को समझना निश्चित रूप से आसान नहीं होने वाला है, तो लॉज विल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो लेकिन इस सब एक्सप्लेनेशन से हम क्या एक आधारभूत कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, आप देखिए गुडल्स थ्योरम और एम थ्योरी से द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ द टाइम इज कंक्लूडिंग दैट by physics it will not be possible, by mathematics it will not be possible to know how this universe has come into existence, how this universe has come into existence. So iska next conclusion kya hona chahiye, ek scientific minded person hai, what should be his reaction? So is there any other way to know creation? Jab aap ek raaste pe chal rahe ho और आपको पता लग रहा है कि आपके रास्ते से आप कभी नहीं पता लगा सकते कि ये क्या है, तो फिर बुद्धिमत्ता किसमें है कि क्या कोई और तरीका है, क्या क्या कोई और पैराडाइम है जिससे ये सृष्टि को एक्सप्लेन किया गया है? आर यू फॉलोइंग दिस आर्ग्यूमेंट? सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल टुडे इन द क्लास, कि बिग बैंग थ्योरी से या जो भी थ्योरीज हैं उससे साइंटिस्ट देमसेल्फ आर कमिंग टू कंक्लूजन that they cannot find. So therefore, there is a need for some other way to look at the beginning of universe. एक और दृष्टिकोण की जरूरत है सृष्टि को समझने के लिए. तो हम वैज्ञानिकगण जिस विधि से चल रहे हैं उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल मीन्स फंडामेंटल assumptions हैं, फंडामेंटल assumptions हैं. कोई भी साइंस, जो साइंस के स्टूडेंट हैं they may be knowing it. कोई भी साइंटिफिक थ्योरी शुरू होती है कुछ एजम्पशन से, फंडामेंटल एजम्पशन से, एजम्पशन. तो एक एजम्पशन है जो बिग बैंग थ्योरी और जितने भी साइंटिस्ट के एंडेवर है उसका बेसिस क्या है, दे एज्यूम दैट एवरीथिंग, जो भी यूनिवर्स में चल रहा है, जो भी फेनोमिनन है, एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन सिंपली बाई मैकेनिक्स, सिंपली बाई फिजिकल केमिकल लॉज. दिस एन एजम्पशन. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज केवल जड़ है. देयर कैन बी लाइफ डिफरेंट फ्रॉम मैटर, देयर कैन बी लाइफ डिफरेंट फ्रॉम मैटर. दिस कैन बी ऑल्सो हाइपोथेसिस, ये भी हाइपोथेसिस हो सकती है. लेकिन हमारी जो पूरी मॉडर्न साइंस डेवलप हुई है वो इस एजम्पशन में डेवलप हुई है कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज मैटर. वी स्टार्ट विद दिस हाइपोथेसिस दैट अल्टीमेटली एवरीथिंग इज मैटर, एंड सो वी ट्राई टू एक्सप्लेन यस वेदर इट इज राइट और नॉट. दिस इज द वे हाउ मॉडर्न साइंस इज डेवलपिंग. आर यू फॉलोइंग दिस? ये बेसिक एजम्पशन है दैट एवरीथिंग इज मैटर. नाउ लेट्स ट्राई बाई फॉलोइंग दिस लाइन ऑफ थॉट कैन वी एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो वॉट वी आर फाइंडिंग, नो वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं सब कुछ. बिग बिग क्वेश्चन विच रिमेन अनसेटल्ड. सो देयरफॉर ए साइंटिफिक पर्सन शुड थिंक ओके मेरी पहली हाइपोथेसिस से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सो देयरफॉर आई शुड ट्राई सम अदर हाइपोथेसिस. करेक्ट. सो देन द अदर हाइपोथेसिस इज वॉट? दैट इज वेदांतिक हाइपोथेसिस. वेदांतिक हाइपोथेसिस क्या है? शास्त्र की हाइपोथेसिस क्या है कि दो शक्तियां हैं, एक जड़ शक्ति है और एक चेतन शक्ति है. लाइफ और मैटर दो अलग अलग चीजें हैं, दो एक चीज नहीं, दो अलग अलग चीजें. इसीलिए हम इस यूनिवर्स की को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं जब तक हम दोनों एनर्जी को कंबाइन नहीं करें. जब तक हम जड़ पदार्थों के बारे में और चेतन के बारे में नियम नहीं जाने तब तक हम इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. जैसे आपको अभी किसी एक जीवित व्यक्ति की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि वो ये काम क्यों कर रहा है, क्यों सोच रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, हर चीज को आपको एक्सप्लेन करना है. अगर आप सोच रहे हैं कि आदमी मतलब केवल एक मशीन है, हाँ, तो आप उसको कुछ मशीन के नियम, मैकेनिक्स के नियम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें एक आत्मा है, एक जीवनी शक्ति है जो फिजिक्स के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है. इट इज बियॉन्ड द लॉज ऑफ फिजिक्स. सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन सिंपली बाय लॉज ऑफ फिजिक्स एवरीथिंग अबाउट अ लिविंग पर्सन? आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम स्पीकिंग एंड दिस स्पीकर इज ऑल्सो स्पीकिंग, वी आर बोथ स्पीकिंग. करेक्ट. अभी स्पीकर की जो स्पीकिंग है, एक साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि हाउ दिस साउंड इज कमिंग बाय फॉलोइंग लॉज ऑफ फिजिक्स. ही कैन एक्सप्लेन दिस. करेक्ट. ही कैन एक्सप्लेन दिस हाउ साउंड इज कमिंग. अगर सेम प्रिंसिपल्स मेरे पे अप्लाई किए जाए तो क्या विल साइंटिस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन? नो, बिकॉज मेरे अंदर मैं एक आत्मा हूं. ये सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी, व्हाई एट ऑल आई स्पीक. मैं बोलता ही क्यों, मैं बोलता ही क्यों, व्हाई आई स्पीक एट ऑल. ये क्वेश्चन मैकेनिक्स में सॉल्व नहीं किया. इसलिए साइंटिस्ट, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, दे अंडरस्टैंड डोंट जस्ट ट्राई टू नो हाउ द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो ट्राई टू नो व्हाई द यूनिवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस. केवल क्यों प्रश्न मत करो, कैसे प्रश्न मत करो कैसे, लेकिन साथ साथ ये प्रश्न भी करो कि क्यों. तो ये स्पीकर कैसे काम कर रहा है, इसमें कुछ स्पीकर है, एक मैग्नेट है, इसमें कुछ इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ये सब क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, स्पीकर कैसे काम कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है. लेकिन क्यों स्पीकर काम कर रहा है, ये स्पीकर है ही क्यों, एग्जिस्ट ही क्यों करता है और कैसे क्यों है? उसके लिए आप केवल मैकेनिकल लॉज से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस स्पीकर को बनाने वाला एक आदमी है जिसने सोचा है कि मुझे एक आवाज को एम्पलीफाई करना है, इस सोच करके उसने बनाया. ये जो सोचना है, इच्छा है, फ्री विल, ये क्या हमारी लॉज ऑफ फिजिक्स में आता है? इज इट इन द परव्यू ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, फ्री विल, कॉन्शियसनेस? नो. तो इसीलिए इस यूनिवर्स में दो चीजें हैं. वैदिक पैराडाइम क्या है, वैदिक समझ क्या है? यूनिवर्स के अंदर एक जीवनी शक्ति है और एक जड़ पदार्थ है. तो जड़ पदार्थ की फंक्शनिंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हो मैकेनिकल लॉज से, लेकिन जो आत्मा का कारण, जो जीवनी शक्ति का जो अंग है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए अल्टीमेटली टोटली टोटल फेनोमेना यू कैन नेवर एक्सप्लेन अनलेस यू टेक बोथ द थिंग्स इन अकाउंट। जब तक आप दोनों चीज को नहीं अकाउंट में लेते हो, तब तक यू कैनॉट एक्सप्लेन। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, साइंटिस्ट आर अनएबल टू एक्सप्लेन। एक और महत्वपूर्ण एंडेवर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हैव यू हर्ड ऑफ दिस कंसेप्ट? व्हाट डज इट मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Yeah, it's related to that. That's the beginning of that. Artificial intelligence is an endeavor to find out, are machines intelligent? क्या machines intelligent होती हैं? So basic understanding is yes, man is just a machine. Man is just a machine. So if we can study man, we will be able to make man. Because man is a machine. It's just a most sophisticated machine. Bahut sophisticated machine. So it is possible to make a man. So isliye artificial intelligence ka lakshya hai, we will be able to make man who will think, who will act independently, who will take decisions, and to the last extent he will procreate also. वो जो है एक कंप्यूटर अपने जैसा एक और कंप्यूटर को जन्म भी दे सकता है। जैसे आदमी बच्चे को जन्म देता है, ऐसे अल्टीमेटली मैन इज मशीन। सो इफ वी कैन, इट इज पॉसिबल वी कैन मेक ए मशीन विच विल गिव राइज टू अनदर मशीन विच विल प्रोग्राम इट सेल्फ एंड एवरीथिंग वॉट वी आर डूइंग मशीन विल डू। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो now in the field of artificial intelligence there are so many, it's a detailed topic, again there are so many tests been done. Jaise ek hai Turing test. Turing test means ek aadmi hai wo computer pe baitha hua hai aur ek wo dekh le sakta hai ek aur computer, programmed computer hai aur ek taraf ek aadmi baitha hai computer pe, theek hai, और यहां पर इंटरोगेटर बैठा है पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला, और ये तीनों कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, इंटरोगेटर्स। सो इंटरोगेटर ही आस्क सम क्वेश्चंस टू बोथ ऑफ देम, टू अ कंप्यूटर एंड टू अ पर्सन ऑपरेटिंग कंप्यूटर। ओके, नाउ ही डज नॉट नो फ्रॉम वेयर द आंसर इज कमिंग। सो ही आस्क क्वेश्चंस, इफ बोथ ऑफ देम आर एबल टू आंसर एंड ही डजंट, ही कैनॉट डिफ्रेंशिएट कि कौन सा आंसर कंप्यूटर दे रहा है और कौन सा आंसर आदमी दे रहा है। तो अगर ऐसा हो तो दैट मीन्स बोथ ऑफ देम आर इक्वली इन इंटेलिजेंस, द कंप्यूटर एंड द मैन आर इक्वल इंटेलिजेंस। दिस इज ट्यूरिंग टेस्ट। सो फार नो कंप्यूटर इज एबल, नो मैन मेड रोबोट और कंप्यूटर सिस्टम इज एबल टू पास द ट्यूरिंग टेस्ट। ऑलवेज एक कंप्यूटर बड़े बड़े काम कर सकता है, कंप्यूटर से यू कैन डू सो मेनी कैलकुलेशंस, यू नो बिग बिग थिंग्स यू कैन डू, लेकिन एक कंप्यूटर एक 5 साल के बच्चे जैसा भी नहीं सोच सकता। करेक्ट, एक 5 साल का बच्चा, आप देखो उसका बिहेवियर, देयर इज सो मच ऑफ फ्री विल इन दैट, आइसक्रीम खाना है कि नहीं खाना है, कि ये खाना है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, कैन यू सी। एक 5 साल के बच्चे का भी बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। सो कंप्यूटर्स, बिग बिग कंप्यूटर्स कैन डू बिग बिग थिंग्स, यू नो, बट दे कैन नॉट डू व्हाट अ 5-year-old कैन डू। व्हाट डज इट मीन दैट इन ह्यूमन बींग देर आर टू डिपार्टमेंट्स, एक है मशीन पार्ट और एक है लाइफ पार्ट। मशीन पार्ट यू कैन इमिटेट, यू कैन मेक कंप्यूटर्स विच कैन इमिटेट मशीन पार्ट। जैसे दिस इज अ मशीन पार्ट कि ये उठाना है, सो यू कैन मेक ए रोबोट हु कैन लिफ्ट इट अप, एंड यू कैन मेक ए रोबोट कि जो आदमी नहीं उठा सकता वो उठा सकता है, लाइक दिस योर जेसीबीज। सो क्रेन्स और जेसीबीज, ह्यूमन बींग कैन नॉट लिफ्ट एंड जेसीबी कैन लिफ्ट। Similarly, your calculator, you cannot beat your calculator. You cannot beat, you know, in a fast calculation karega. You cannot beat. So these are some of the things which computer can imitate, because this belong to mechanical part, body part. Lekin, can you make computer love someone? Can you make someone fall in love with computer? Human being can do that. We feel love for each other. इज इट पॉसिबल टू मेक कंप्यूटर दैट विल मेक समवन फॉल इन लव विद कंप्यूटर दैट इज नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि साइंस की लिमिट्स क्या है. साइंस इज एक्टिंग इन द स्फीयर ऑफ मैटर एंड इट कैन डू वंडरफुल थिंग्स इन दैट मैटर, नो डाउट. बट इफ यू कंफ्यूज कि बिकॉज हम लोग मैटर के संबंध में, मैकेनिक्स के संबंध में वी आर एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, दैट मीन्स वी कैन मेक ए ह्यूमन बींग, दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग. बिकॉज ह्यूमन बींग इज टू थिंग्स कंबाइंड, मशीन एंड ऑपरेटर ऑफ द मशीन. So you can imitate machine and you can even make better, so called, somewhat better in many way. JCB has, it's a better machine, it can work better. Calculator is a better machine, it can calculate faster, it's a better machine. But then the desire to calculate, the desire to lift, why I should lift, why I should lift only this, and why I should not lift like this, or so many. Can computer do this? This free will. Next point, can computers feel? Can computers feel? Huh? Suppose somebody insulted you. Okay? Aapko chot lagti hai na? You feel hurt. So if somebody is typing in the computer, you are an idiot, you are a rascal. So will computer be feeling hurt? Can computer feel hurt? You can type, you can program it, that if somebody says you are an idiot, and you respond, you are a nonsense. You can type in the computer, you can program. आप ऐसा कंप्यूटर में प्रोग्राम बना सकते हैं कि आप उसको टाइप करो तो यू शुड गिव बैक दिस आंसर. दे कैन बी ए माइक, उसमें एक स्पीकर फिट कर सकते हैं कंप्यूटर में. तो जैसे ही कोई आदमी और बोलेगा, यू नो कंप्यूटर कैन हैव दिस वोकल रिकॉर्डिंग सिस्टम. सो यू इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर यू सिट एंड यू टेल यू आर एन इडियट एंड दे कैन बी प्रोग्राम, दैट कंप्यूटर विल कम बैक, यू आर अ रास्कल, यू कैन मेक दैट सिस्टम करेक्ट. बट डज दैट मीन that as we feel hurt, that computer is also feeling hurt? No. So therefore, very important conclusion which you have to understand, that there are two things. There is machine and there is beyond machine, man, operator of the machine. So वैज्ञानिक कण क्या कर रहे हैं? They are confusing these two as one. That is the whole problem. They are confusing. ये दोनों को एक मान रहे हैं. लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों के लॉज अलग हैं, इसलिए आप कैसे संभव होगा सब कुछ एक ही लॉ से एक्सप्लेन करना. एंड देयरफॉर इतनी सारी थ्योरी हैं, इतने सारे अन्वेक्षण हो रहे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं, वहीं के वहीं मींस वी आर मेकिंग प्रोग्रेस लाइक इन टर्म्स ऑफ यू नो अभी लेजर बीम्स हैं, अभी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं. बट एज फार एज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ दिस रियलिटी, एक्चुअली इफ यू सी डीपली, जितना भी हमने एडवांसमेंट किया है, स्टिल वी आर फार फार अवे फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी. रादर मोर वी आर एडवांसिंग, वी आर फाइंडिंग हाउ मच अवे वी आर, डिस्टेंट अवे वी आर फ्रॉम द रियलिटी. जितना हम ज्यादा पता लगाते हैं, उतना ही ज्यादा हमको अनुभव होता है कि हम कितना कम जानते हैं. दैट्स एन इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग. द मोर वी नो, वी रियलाइज हाउ लेस वी नो. The more we know, we realize how less we know. जितना ज्यादा हम साइंटिफिकली एडवांस कर रहे हैं, उतना ज्यादा हमको बता रहे हैं कितना कम जानते हैं. अर्थात एक्चुअली अ रियल साइंटिस्ट बाई साइंस विल कम टू कंक्लूजन दैट सिंपली बाई साइंस वी कैनॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग. देर इज अ गॉड बियॉन्ड गॉड हु इज बिहाइंड ऑल दिस मैनिफेस्टेशन. Who has programmed this? Yeah? Who has planned this? Who has designed this? Huh? Or who is working day to day? Who is interfering, coming into picture day to day? इसी प्रकार से आदमी और उसमें एक आत्मा है, और day to day that आत्मा, there is interaction between matter and spirit. So therefore, this is the theory of everything. What is the theory of everything? Theory of everything means there is spirit and there is matter, and both of them are interacting. So, in nutshell, Vedantic philosophy कहती है कि इस सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता है और उसका एक हेतु है जिससे कि उसने इस सृष्टि को बनाया है। अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, यदि आपको ये एक देखने को मिले कि एक स्पीकर रखा हुआ है, माइक रखा हुआ है, और यदि आप इसको स्टडी करते हैं, तो अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको इसको स्टडी करने से ही हिंट मिलेगा कि इसे किसी एक पर्पज के लिए बनाया गया है, करेक्ट। बाय स्टडिंग दिस माइक एन इंटेलिजेंट मैन कैन गेट अ हिंट दैट इट मस्ट बी मेड विद सम पर्पज एंड व्हाट इज दैट पर्पज, ही कैन गेट अ हिंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी दिस होल मैकेनिज्म, स्पीकर एंड एवरीथिंग, इफ यू स्टडी व्हाट विल बी द पर्पज विच यू कैन विल कम आउट बाय स्टडिंग दिस सिस्टम। इस सिस्टम को समझने से ही आप क्या कंक्लूजन पहुंचेंगे? एम्पलीफाइंग द साउंड, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन गेट अ हिंट। सिमिलरली, इफ यू स्टडी नेचर, बाय स्टडिंग इटसेल्फ वी कैन नो दैट नेचर हैज सम पर्पस, एंड व्हाट इज दैट पर्पस, दैट ऑल्सो वी कैन गेट अ हिंट। व्हाट इज दैट पर्पस इफ यू सी? Now, Vedantic understanding says the purpose is this universe is made to help us come to the platform of perfect happiness. इस पूरी सृष्टि के पीछे जो हेतु है वो है हम सबको perfect happiness के platform पर पहुंचाना। अभी कैसे उसको हम ये conclusion पर कैसे पहुंचे? How we have come to this conclusion? Now you study this material world. There are few qualities. First, this material world is temporary. भौतिक जगत जो है वो क्षणिक है. And it causes misery, miserable. भौतिक जगत miserable है, दुखदायी है, दुखदायी है. Then you study कि हम लोग जो हैं वी आर गाइडेड इन अवर एंडेवर्स टू बिकम हैप्पी, टू अचीव सक्सेस, वी आर गाइडेड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट लाइक दैट, दैट यू आर गाइडेड फ्रॉम विद इन इन योर एंडेवर्स? आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है कि आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसके रास्ते में आपको यू गेट सम गाइडेंस फ्रॉम अबव यू, beyond yourself you get that guidance? Okay, some of you, it is difficult even to experience it, but we find big scientists who have achieved big things. Most of them, if you talk to them, if you hear from them, their understanding, their notion, how they came to ultimately derive big things. So if you read on inspiration, you will find that scientists, most of the scientists who are not chota mota scientist, not like just studying books, getting pass, teaching in the college, their purpose is getting money, that's it. Not that type of scientist we are talking about. Scientists who are who make impact in the development of science, they discover. For example, there is one scientist, Tony. He discovered laser beams. So he explains that one scientist explains ki one night I had something in my dream and I felt ki jo problem main jis pe work kar raha hu, it is a solution of that problem. Morning mein jab main utha, I was not able to recollect what actually was in my dream. So I felt very depressed. Next night at 3 o'clock, again same thoughts came, and it was a solution to what I had been working for 17 years. Immediately he got up, went to his lab, put it down in his notes, did the experiment. Means he got that indication, clear indications ki what should be the experiment to find out what he was trying to find for 17 years at night at 3 o'clock. Another scientist, he says, I was in a hotel with my friends and dining, and suddenly some ideas came up to my mind which I felt are the answer to the question which I have been looking for. Immediately उसने क्या किया, नैपकिन, पेपर नैपकिन के ऊपर he made some notes. And immediately he rushed, left the party, left the hotel, immediately rushed to his laboratory and did that and made a big change in the history, big achievement. Similarly, you see the big artists who musicians, many musicians, they have come ki suddenly when I'm in a very good mood, some days very happy, suddenly the symphonies, they just come in my mind. I just don't have to work, endeavor, it just comes. So there are very clear indications. If you see agar aap bade bade scientists ke jeevan se dekhenge ki we are guided, especially when we are tackling a big problem, it's very very big problem, big thing, then we feel that we are guided like that. So that we feel guided, so that things help us to give a hint that actually this universe is designed in a way to help us achieve a state of happiness. हम सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, ultimately हम लोग सुखी रहना चाहते हैं, और this universe is made for this purpose and everything which exists here is guiding us toward this goal. Guided to come to this goal. So Vedic understanding elaborates on this point. इस पॉइंट को विस्तार से बताती है कि अंततः हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, मशीन से अलग हैं, और इन दोनों से ऊपर है एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो तीन फीचर्स में वी कैन अंडरस्टैंड इन थ्री फीचर, थ्री लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्यूट ट्रूथ. वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान. नाउ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आइंस्टाइन वॉज ए थीस्ट और एथीस्ट. आइंस्टाइन बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉट? एनीबडी हैज एन आइडिया व्हाट इज आइंस्टाइन्स? ही बिलीव्ड इन गॉड. ओके, व्हाट वॉज हिज कंसेप्शन ऑफ गॉड? So Einstein's God is an impersonal God. It's an energy, super all-pervading energy, which is ultimately everything. So Einstein did not have the conception of a person as a God, a thinker who creates with like that. But of course, it seems somewhere Einstein had some understanding, some idea of that God is a person. Because Einstein's statements are, God, I don't think God will throw dice. The statements like that. I understood that God, jo hai, he throws dice. What do you say dice? Pasa nahi phekta hai. So such a statement shows that Einstein had some idea of person. But in general, he thought that God means it's energy existing everywhere. So generally you see, scientists, intelligent scientists, at most they come to this understanding, yes, there is some energy which is very vast and existing everywhere, which is ultimately the cause of everything. But this is the first level of understanding from the Vedanta point. They are coming near to the lowermost understanding of absolute reality, that is called Brahman, impersonal Brahma Jyoti, जो शक्ति जो पूरे इस ब्रह्मांड में और इस ब्रह्मांड के बियॉन्ड एक्चुअली व्याप्त है. लेकिन वैदिक अंडरस्टैंडिंग इज देयर इज अनदर लेवल ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ व्हिच इज परमात्मा. परमात्मा मतलब भगवान का एक विस्तार जो हर कण कण में मौजूद है और जो हर व्यक्ति के, हर जीव के हृदय में उपस्थित है और उसको गाइड कर रहा है. दिस इज व्हाट द कॉज ऑफ इंस्पिरेशन, cause of inspiration, or the prick. Sometimes we do something and immediately feel, no, you should not do like this. It guides us, the guiding principles. अगर हम शास्त्र की दृष्टि से उसको समझने जाएं, तो ये जो परमात्मा है, जीव की इच्छा के अनुसार और उसके कर्म के अनुसार उसको गाइडेंस देते हैं, जीव की इच्छा और उसके कर्म के अनुसार गाइड करते हैं। तो आइंस्टाइन और एनी ग्रेट साइंटिस्ट लाइक दिस टोनी हु डिस्कवर लेजर, सो ही इज फीलिंग, टोनी बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन पर्सन गॉड, ओके, सो ही इज बीइंग गाइडेड ऑन व्हाट बेसिस ऑफ हिज डिजायर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एंड हिज एंडेवर्स हिज कर्म। तो जो साइंटिस्ट जो बहुत प्रयास कर रहा है और इच्छुक है बहुत और बहुत प्रयास कर रहा है, उसके अनुसार परमात्मा गिव्स द गाइडेंस इंटेलिजेंस, एंड देयरफॉर बाय दैट इंटेलिजेंस दे आर एबल टू एक्चुअली डिराइव, कम टू दैट कंक्लूजन, कम टू दैट डिस्कवरी, बिकम सक्सेसफुल, बिकम सक्सेसफुल। दिस इज द वेदांतिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ वी बिकम सक्सेसफुल, हाउ वन पर्सन बिकम सक्सेसफुल, हाउ समवन बिकम्स मिलियनेयर। इट इज नॉट जस्ट बाय चांस, इट इज गाइडेड बाय परमात्मा। यू सी, दो आदमी हैं, दोनों को एक से ऑप्शन दिए गए, आप इसमें शेयर में इन्वेस्ट करो, आपको इतना पैसा मिलेगा। दोनों आदमी को एक ही ऑप्शन है। वन पर्सन डिसाइड्स, ओके आई विल डू इट। अनदर पर्सन डिसाइड, नो आई शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस शेयर, आई शुड इन्वेस्ट इन सम अदर शेयर। दिस इज वन स्मॉल क्रूड एग्जाम्पल। सो व्हाट गाइड्स दैट डिसीजन? आपके पास ऑप्शन आता है, ये कंपनी ज्वाइन करो या तो ये कंपनी ज्वाइन करो, एंड देन यू डिसाइड, एंड आफ्टर सम टाइम फाइंड कंपनी फ्लॉप हो गई, एंड देन यू फाइंड मेरा वो डिसीजन। So what is that thing that guides you in deciding all these things? So one way of saying is, it's just by chance. But if you look in detail, if things so important are governed by chance, then this whole world will not be so systematic. Agar ultimately chance is governing this world, then how do you explain such systematic working of this world? Kya hamare experience mein hai ki kahin chance hai aur systematic organized work ho raha hai? आज आप यहाँ बैठे हैं, ये पंखे चल रहे हैं, पंखे लगाए गए हैं, ये लाइट चल रही है, ये स्पीकर काम कर रहा है, हाँ, तो अगर कोई आदमी आके बैठ के सोचे इट इज जस्ट बाय चांस दैट सम हाउ दिस फैन इज देयर, सम हाउ दिस माइक इज वर्किंग, सम हाउ दिस माइक इज स्विच ऑन, इट इज जस्ट बाय कोइंसिडेंस, इट जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट यू आर हेयर, आई एम हेयर, दिस माइक इज हेयर, दिस फैन इज हेयर, एवरीथिंग इज जस्ट बाय, can it be coincidence? Coincidence maybe I throw this thing and it falls like this and it hits him. You can explain this as a some sort of coincidence. अगर कोई चेयर है और चेयर सब ऊपर से फेंके और चेयर ऊपर से ऐसे उल्टी सीधी बिखर जाए, आप बोल सकते हैं इट जस्ट कोइंसिडेंस कि ये चेयर इसके ऊपर आ गई। लेकिन अगर सब चेयर बहुत सिस्टमेटिकली एक एक फिट के डिस्टेंस पर लगी हुई हैं, पूरे रूम में जितनी हैं पूरा एग्जैक्ट सब स्पेस भरा हुआ है, can you say that this is by coincidence? they are cleaned you know, so many things it cannot explain. Isko bolte hain anthropic principle. What is this called? Anthropic principle. To agar aap hamare universe mein dekhe, so there are fundamental universal constants. Do you know about them? No, you must know universal constants, gravitational constant, Planck's constant, there are so many constants. Okay? So, agar un constants ki value decimals, maybe 10th or 10th, 20th decimal maybe yadi badal jaye, to universe will not be like this. It will be complete difference. For example, electron ek cell ke andar, ek atom ke andar, jo mass hota hai, wo kahan hota hai? Nucleus mein hota hai. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेग्लिजिबल, न्यूट्रॉन्स आई मीन द प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर एरिया किसका ज्यादा होता है? न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज मोर स्पेस और द इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ अगर ये मास इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड होता इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में, तो एवरीथिंग विल बी फ्लूइड। जो हम देख रहे हैं सम थिंग्स आर सॉलिड स्टेट, दैट विल नॉट बी सिचुएशन। एंड जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी अवर एग्जिस्टेंस इफ एवरीथिंग इज जस्ट फ्लूइड। आई वॉन्ट बी सिटिंग लाइक दिस, यू वॉन्ट बी सिटिंग लाइक दिस। सो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं दे आर सो फाइनली ट्यून्ड कि अगर उसमें डेसिमल्स में भी चेंज हो जाए सो यूनिवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस? that it is finely tuned, it is finely designed. Now you just imagine, you are going to say Shimla, now on in the month of January to Shimla or further in north Himalaya, and there you go in a hotel, ठीक है? और होटल में आपने रूम लिया और उस रूम में आपने देखा there is a room heater working, already working before you entered, so the room is keeping the temperature, then the plug point and everything is so nicely made, and then you go in the bathroom and there is a geyser and it's already water is there, and you just switch on and then the water comes at exactly the temperature where you can take bath, and then the windows are there, ventilation is also there in a way that snow does not come but some air comes, like there are so many minute details, everything is nice. Now what is the general impression when you go in such a room? That the owner of this hotel, he has intentionally planned everything, thought ki ye Shimla hai, yahan par sardi ka mausam hai, यहाँ पर जो भी आदमी आएगा उसको एक रूम हीटर चाहिए होगा, उसको बाथरूम में नहाने के लिए गीजर चाहिए होगा, उसको सोने के टाइम पर ब्लैंकेट चाहिए होगा, ये सब सोच करके उसने वहां रखा है. कैन इट बी कोइंसिडेंस कि जस्ट आदमी आया, बाय चांस देयर वाज अ ब्लैंकेट, बाय चांस देयर वाज अ गीजर, बाय चांस देयर वाज अ रूम हीटर. सो दिस इज कॉल्ड एंथ्रोपिक प्रिंसिपल. सो सिमिलरली इफ यू स्टडी अवर यूनिवर्स, वॉटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. If this law has been different, if water had been solid at room temperature, what would have been our situation? You see, everything so nicely arranged, everything, this gas, the mixture of gases. हमारा जो ये हम जो हवा ले रहे हैं उसमें जो combination है gases का, oxygen, nitrogen, it is exactly the combination which is making us survive. If there is little deviation, we won't survive. So what these things show? Then very very intelligent person has, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने ये सब चीजें बहुत इस प्रकार से सुनियोजित तरीके से बनाई हैं जिससे कि जीवन संभव हो. Isn't it the logical conclusion which we can draw? So in this way, if we think with a common sense, अगर हम लोग डिटरमिंड नहीं है कि मुझे भगवान को नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है, अगर हमारा ये एटीट्यूड नहीं है, अगर हमारा हम नास्तिक, हार्ड कोर एथिस्ट, लाइक अवर होल एम इन लाइफ इज टू प्रूव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारा यही जीवन का लक्ष्य नहीं है, दिस होल पर्पज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज डिसप्रूविंग दैट गॉड एग्जिस्ट, अगर ये पर्पज नहीं है, देन वी कैन इजिली understand that behind all this there is a very intelligent person working, he has a purpose, and therefore it is our duty, it's our in our favor, hamare hit mein hai ki janna ki kya purpose hai creation ke piche jisse unhone isko banaya hai, humse wo kya chahte hain, aur main tabhi sukhi reh sakta hu jab main unke purpose ko jankar us purpose ke anusar jiyu. That's a simple common sense conclusion. If we are not envying God, अगर हम भगवान के प्रति ईर्ष्यालु नहीं हैं, तो ये conclusion हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर ईर्ष्यालु हैं, then no one can actually convince you. If you don't want to be convinced, no scientist, the most spiritual scientist, even if Einstein happened to be a pure theist, Einstein cannot convince a scientist with all science that God exists. Do you follow this statement? So it's impossible, because by science it's impossible neither to prove God nor to disprove God. Science has its limitation. Gödel's theorem, we already discussed, neither you can 100% prove nor you can disprove. कई बार लोग बोलते हैं ठीक है आप मानते हो भगवान को, एथिस्ट हो, ठीक है, नाउ यू प्रूव मी गॉड एग्जिस्ट. Now you keep on giving one by one argument. For every argument they will have some counter argument. You can never prove it. But just ask the same question to them. Okay. Now you disprove God. you prove to me that God does not exist. It's not possible to disprove. It's not possible. Impossible to say God does not exist. So actually the same thing, it's, so it cuts. Ye dono ek dusre cut karte hain. So therefore, sane understanding, simple understanding is, we have to understand that we should give up this attitude that I will not accept God. And this God, because why we don't want to accept God? Paap karmo ki vajah se. Hum Bhagwan ki swikar nahi karna chahte. ये पिछले जन्मों में किए गए पाप कर्म का परिणाम होता है. इसलिए शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति पशु हत्या करता है, जो मांस खाता है, जो हिंसा करता है, ही कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट मैटर. इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है ये चार नियम, मांसाहार मत करो. ये ऐसे नहीं बोले गए कि जो आदमी जीवों को अपने जीवा संतुष्टि के लिए मार रहा है, ही इज फार 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 अवे, डिसक्वालिफाइड to begin to understand God. He is not even a human being. Can you expect कि आप सोच सकते हैं कि एक सुअर या कुत्ता या जानवर भगवान को समझ सकता है? Ordinarily, he is not in capacity. उसी प्रकार से actually जो आदमी पशु हत्या कर रहा है वो इतना sinful है, पाप कर्म कर रहा है, that his intelligence will work in the direction of dull brain, not able to understand, dull brain. And Isha, Bhagwan ke sath. Kya main bhogta hu? Main bhogta hu Bhagwan, kyunki agar hum Bhagwan ki existence ko accept karenge, it means what? It's a big thing. That means you have to surrender to him. You have to take his order. Theek hai, agar hum swikar karte hain ki Bhagwan hai, that means you immediately become small. Correct? Therefore, atheists don't want to accept God. Because they want to continue feeling, I am great, I am enjoyer, मैं भोगता हूं. लेकिन जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि भगवान है, इसका मतलब आप भोगता नहीं है. You cannot whimsically enjoy, you cannot just do anything. You have to ask, you have to understand. आपको सोचना पड़ेगा भगवान क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं आपसे. अगर आपकी इच्छा है मैं ये करूं, भगवान की इच्छा ऐसा मत करो, तो you cannot do. So atheist means we don't want to accept this. We want to continue to remain God. Actually, that is the root cause. वही हमारे सबकी बीमारी है जिसकी वजह से we are in this world. We all want to become. Yeah, we will have question session after that. So therefore, we should study. We have many such books. जो लोग इस विषय को जो are interested in science, please go through these books. First, try to understand science at present and with assumption. In the near future and the long future, they are nowhere near explaining universe, creation, life. They are far, far away from it. So don't just think scientists have explained everything. सामान्य रूप से क्या होता है, सब लोग जो layman है वो क्या बोलता है, अरे ये देखो वो स्टीफन हॉकिंस ने वो अभी वो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, नाउ इट इज गोइंग टू प्रूव एंड दे हैव ऑलरेडी प्रूव एंड दैट्स इट. डोंट, इट इज नॉट लाइक दैट. रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. दैट इज द फर्स्ट थिंग. इज द फर्स्ट थिंग. रियलिटी इज नॉट लाइक दैट. So don't just take it for granted and throw God. Abhi Bhagwan ki zarurat nahi hai, scientists have understood everything. And another thing, that okay, science has done a lot, bahut kuch kar diya hai, and near future they will be able to do it. Itna sara kiya hai, to thode samay baad baki bhi kar denge. Lekin intelligently try to understand, wo jo bahut thoda, bahut sara kiya hai, wo jo bahut sara kiya hai, wo bahut sara kya hai, it's a tiny, tiny, tiny thing in the whole thing. वो बहुत सारा मिला करके भी इट्स वेरी टाइनी, इट इज नो वेयर नियर. फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड लाइफ. व्हाट इज द प्रूफ? व्हाट दे हैव डन, दे हैव क्रिएटेड एमिनो एसिड्स. जनरली लेमैन से पूछो, एक कॉमन साइंस के स्टूडेंट से पूछो, क्या लाइफ को साइंटिस्ट ने, या दे हैव प्रोड्यूस्ड एमिनो एसिड्स. नाउ इज एमिनो एसिड लाइफ? Is amino acid life? Is it somewhere near amino acids? In your chemistry lab, you are making so many chemicals, and because you have made amino acids, it is in no way near to creating life. Now you may say, ठीक है यार, amino acid तो छोड़ो, वो तो पुरानी बात है. Khurana has made gene. You have heard of Khurana? Khurana. Now he has made gene. So that means we are near. But sir, this gene is equally not much advanced than amino acids. If you really, if you are a science student, you see, you study. Genome is not much advanced. It may be advanced in many ways, but if you see the whole picture, it is still much, much away from the life. Genome is not life. So, therefore, intelligently we have to think. So, kaun sochenge intelligently? Jab hum log sincere honge heart mein. When we really want to understand God. और अगर हमारे जीवन का लक्ष्य खाना पीना मौज करना है, फिर चाहे कोई बोले भगवान है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो ठीक होगा, मुझे तो कुछ लेना नहीं है, मेरा तो जीवन का लक्ष्य है खाओ पियो मौज करो, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो लोग जीवन के प्रति गंभीर होना चाहते हैं, जो जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, जो लोग जीवन में जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मरने के टाइम पर लगे जो मैंने जीवन में किया बस बेकार किया सब, जो लोग इस हताशा में एंड नहीं करना चाहते हैं, जो इंटेलिजेंटली अभी से ही अपने जीवन को समझना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड भगवत गीता, यू प्लीज रीड दिस बुक्स, स्पेशली आई रिकमेंड दिस बुक लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, वी हैव परचेज दिस बुक, इट सीम्स गुड, रीड दिस बुक एंड देर इज ऑल्सो वेरी नाइस बुक्स वी हैव डिस्प्लेड टूडे, वेरी वंडरफुल बुक्स, दिस आर ऑल डिस्क्राइबिंग साइंस इन डिटेल and higher level of science as well. Vedanta and Science series written by Professor T.D. Singh. He is a PhD in chemistry from California University. He is a scientist. He is both scientist, material scientist as well as bhakti scientist. Kyunki ye Prabhupada ke shishya hai, jinhone Vedanta science, Vedic science bhi study kiya, deep mein. So it's very helpful to read these books. So I strongly recommend all of you to please make a study. This book, Life and Origin of Universe, this one. Please, make a study of this book, once. We'll stop here. Hare Krishna. Now, any question? I don't know how much, kitna main aapko samjha paya aur kitna aap samajh paye, lekin phir bhi agar koi prashn hai aapko, to aap puchhe. Yes. You wanted to ask something in front?
I just wanted to ask, sabhi vegetarian ho jayenge. I am not a vegetarian, sabhi ho jayenge. Statistics says that
there
that is not sufficient food.
Okay.
For people on the
earth. Okay. Now, any biology student here? Somebody? Okay. What is law of 10 regarding energy, loss of energy, food chain? Food chain hoti hai na? Food chain mein every step there is a loss of energy, which is called law of 10. You must have studied. At every point, there is a loss of 10%. अगर एक गाय, एक बकरी, 100 ग्राम, 1000, 1 किलो घास खाती है, so बकरी के अंदर, it will add to 100 grams of weight. Gross example. उस बकरी को यदि एक शेर खाता है, how much it will get?
20 kilo.
No, from that, 100. We are just taking not the whole. 10 grams. ओके सो 1000 टू 100, 100 टू 10, सो जितनी लंबी फूड चेन होगी उतना ही लॉस ज्यादा होगा, ठीक है? सो नाउ इफ एवरीबडी इज वेजिटेरियन द साइकिल इज शॉर्टर, एटलीस्ट रिगार्डिंग ह्यूमन बींग्स, देर आर लायंस एंड ऑल दैट दे विल कंटिन्यू, लेकिन अगर सब मनुष्य वनस्पति निर्भर करेंगे तो फूड चेन विल बी शॉर्ट, इंस्टेड ऑफ ईटिंग गोट एंड गोट इज ईटिंग द सेम ग्रास same things and you will directly eat the grass. So according to the law of 10, energy will be saved. You will have more energy. Correct? So many factors. Then goat, to survive, to for a goat survive, she needs a lot of water. She consumes herself a lot of energy to just survive. So therefore, jitna lamba chain hoga, jitna yada, actually every level, there will be energy loss. There will be loss of water, there will be loss of energy in different forms. तो इसलिए सोम किन पर कॉमन सेंस है, आप जानवर खाओगे, जानवर तो वही घास खा रहा है जो आप डायरेक्टली खा सकते
हो।
बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर जस्ट डिपेंड ऑन एनिमल्स, यू विल नीड देन इक्वली मोर अमाउंट ऑफ एनिमल्स। नाउ यू आर ईटिंग ग्रास एंड एनिमल्स आर ईटिंग देयर थिंग, इफ यू डिपेंड इंस्टेड ऑफ नाउ ग्रास ऑन एनिमल्स, दैट मीन्स ग्रास कंजम्पशन टोटल विल इंक्रीज देन, because now the animals will be eating the grass, so any there is a loss of energy, so more amount of grass is needed. So agar सो देन आई यू कटिंग द पॉइंट, देन वी नीड मोर ग्रास. सो अगर वो कमी है तो कमी और बढ़ जाएगी. यस यू हैड सम क्वेश्चन. यस प्लीज. भगवान है लेकिन हाँ या या दैट इज कॉल्ड कर्म मीमांसा. वो वैदिक के अंदर भी वो फिलॉसफी है. वैदिक मीन्स Veda means knowledge. Every knowledge is there. This modern science knowledge is also there. Atheistic knowledge. So karma mimamsa matlab Bhagwan ne banaya aur phir khud uske haath mein katputli ban gaya. He cannot do anything now. It's like that. Usne niyam banaya and now he cannot do anything. He is himself, you know, uske andar implicated ho gaya. He cannot do anything. He's, oh, Bhagwan ne banaya nahi hai. ऑटोमेटिक है क्योंकि दुख है. ये इस बात का सबूत है कि भगवान ने नहीं बनाया. सो दैट्स द थिंग. आइदर गॉड इज ऑल पावरफुल. दे आर टू स्टेटमेंट गॉड इज ऑल पावरफुल एंड गॉड इज ऑल मर्सीफुल. सो द आर्ग्यूमेंट इज आइदर गॉड इज नॉट ऑल पावरफुल और गॉड इज नॉट ऑल मर्सीफुल. इफ ही इज ऑल पावरफुल, अगर वो सर्वशक्तिशाली है तो फिर लोग जो हैं वो दुखी क्यों हैं? और अगर वो ऑल पावरफुल है और फिर भी लोग दुखी हैं, इसका मतलब वो ऑल मर्सीफुल नहीं है. दैट मीन्स इज क्रूएल. सो इन दिस वे दे ट्राई टू कंक्लूड दैट शोज दैट एक्चुअली गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. बट इफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम शास्त्रस, हम ये दुख संसार में क्यों है, इसका कारण क्या है. सो भगवान कारण है लेकिन किस तरह से कारण है. जैसे एक कैदी के जेल में उसको डंडे पड़ रहे हैं, उसका कारण गवर्नमेंट है कि नहीं है? क्योंकि जो आदमी मार रहा है डंडे वो कौन मार रहा है? गवर्नमेंट का आदमी मार रहा है. वो जेल किसका, किसके जगह है? वो गवर्नमेंट की जगह है. सो इन दिस सेंस गवर्नमेंट इज द कॉज ऑफ दैट मैन्स पनिशमेंट. बट इज गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल कॉज? उसके पनिशमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या गवर्नमेंट की है? नहीं है. इट इज हिज फ्री विल विच ही हैज मिसयूज्ड टू डिसओबे द गवर्नमेंट लॉ एंड देयरफॉर ही इज अंडर पनिशमेंट. सो सिमिलरली दिस यूनिवर्स, दिस मेटल वर्ल्ड इज मेड फॉर फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ लिविंग एंटिटीज. ओके, नाउ लिविंग एंटिटीज आर इन दिस वर्ल्ड ट्राइंग टू फुलफिल देयर डिजायर्स. Now this material world is working under certain laws. So if you are working under certain laws, then we have to experience the reactions according to laws. You wanted to swim. आप तैरने जा रहे हैं, समुद्र में चले गए तैरने के लिए. Now according to law of water, there are waves. So you wanted to enjoy the water, but then there are waves. So there is a possibility that you will suffer because of waves. So it is not that the sea is the cause of your suffering. It's you are the root cause because you jumped in the sea. No one asked you to jump in the sea. You jumped and then you have to be, you are bound in the laws. Ek baar aap jump kar gaye sea ke andar, then you have to act according to the laws of the sea. You will be bound by that laws. Correct? So similarly, yeah. अगर गॉड इसके अंदर थे, अगर इस गॉड इसके अंदर थे, देन ही इज नॉट गॉड. बिकॉज गॉड, व्हाट वी आर डिफाइनिंग गॉड, गॉड इज समवन हु क्रिएटेड दिस. सो इफ वी से क्रिएटेड, देन व्हाट डज इट मीन? हाउ कैन बी अ पार्ट ऑफ क्रिएशन? बट वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट गॉड. बट वी आर नॉट टॉकिंग, वी हैव टू डिफाइन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. यू कैन से आइसक्रीम, आई एट आइसक्रीम. Where you went? I went to a medicine shop. Medicine shop, you ate ice cream? How is it possible? So you are talking of something different. Maybe some tablet has been named as ice cream. But we are not talking about it. So we have to first find out what we are talking about. God means what? We are talking about God. Definition of God means who is the creator of this material existence. There is no one equal to him. There is no one beyond him. He is the cause of all causes. This is what we are talking about. So what is the definition we are talking? Cause of all causes. Jiska khud koi karan nahi hai. Jiske upar koi karan nahi hai. Aur wo khud sabka karan hai. So when you are saying ki God bahar nikal ke aaya, wo bhi iske andar tha, that means we are not talking of that God. We are talking of different person. So therefore we have nothing to do with them. They are talking of different, but we are not talking of that. We are talking of the person who is creator of everything. That means he exists independent of this creation. We are talking of that person. That's what I explained you. भगवान ने ना तो सुख क्रिएट किया ना तो दुख क्रिएट किया. आपने इच्छा की इस भौतिक जगत में आने की, इसलिए आप भौतिक जगत में आए. अब भौतिक जगत के नियम है, उस नियम के अनुसार एक कंडीशन में आपको सुख अनुभव होता है, एक कंडीशन में आपको दुख लगता है. फॉर एग्जाम्पल, आप जो हैं अभी पानी में आप तैर रहे हैं, ओके, और एक मछली तैर रही है. मछली को पानी में तैरने में बहुत आनंद आ रहा है. जितनी ऊंची वेव्स होंगी इट विल बी मोर हैप्पी. लेकिन एक जो आदमी है उसको वही पानी, इट विल बी अ कॉज ऑफ डिस्ट्रेस फॉर हिम. सो दैट मीन्स गॉड डिडंट क्रिएट डिस्ट्रेस और हैप्पीनेस. यू अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन एक्सपीरियंसिंग वन कंडीशन एज हैप्पीनेस एंड द कंडीशन एज डिस्ट्रेस. सो गॉड, दिस मेटल वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड यू डिजायर टू कम इन टू इट एंड देन अकॉर्डिंग टू द लॉज इन डिफरेंट बॉडीज यू आर. भगवान ने आपको अलग अलग शरीर दिए हैं, जैसे चिड़िया है तो चिड़िया का शरीर है कि ठीक है उसमें मैं उड़ सकता हूं. तो यू केम विद दिस डिजायर एंड दैट डिजायर इज फुलफिल्ड, यू आर एंजॉय फ्लाइंग. बट देन देर इज साइमल्टेनियसली द डिफिकल्टी दैट यू कैन बी शॉट डेट. आप जाल में फंसे भी जा सकते हैं. शेर का शरीर है, यू कैन एंजॉय ब्लड, बट देन यू हैव टू सफर कि जैसे ही शेर बाहर आता है, सब एक जानवर है, स्पेशल बर्ड है, सबको इन्फॉर्म करती है कि लायन इज आउट, गो है. सो ही इज फाइंडिंग अपना उसको शिकार महीने में एक बार ही मिलता है. सो देन ही हैज टू सफर दैट. आप ट्रेन के अंदर बैठ गए, अभी ट्रेन जिस तरह से जा रही है यू हैव टू फॉलो दैट ना. ट्रेन जिस स्टेशन पर हुई, एक स्टेशन है वहां पर चोर उचक के अंदर आ गए ट्रेन के अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर. आप बोल रहे हैं ये कैसे हुआ, मैंने तो ये नहीं मांगा था, ये ऐसा क्यों हुआ. बट यू सिलेक्टेड द ट्रेन एंड द ट्रेन इज गोइंग इन सर्टेन वे, ट्रेन इज गोइंग इन द सब वे और दैट, सो यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स.
In the world, there are so many countries.
तो कौन ये डिसाइड करता है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, ये सब. तो हमारी इच्छा और हमारे कार्य के अनुसार हमें एक विशेष प्रकार का शरीर, एक विशेष प्रकार की सिचुएशन दी जाती है जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें. मनुष्य जीवन में किसी की इच्छा है कि मुझे मांस खाना है, और शरीरों का मिलना बनना एक प्रकार के नियमों से फॉलो हो रहा है. तो अगर आप उस प्रकार का जीवन जी रहे हैं और आपकी इच्छा है मांस खाने की, आपको भगवान अपनी भौतिक प्रकृति के द्वारा ऐसा शरीर प्रदान करेंगे जो सुटेबल होगा आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए. ह्यूमन बर्थ, ह्यूमन बॉडी, यू कैनॉट एंजॉय दैट मच नाइसली नॉन वेज, बट देर आर बॉडीज वेयर यू कैन एंजॉय नॉन वेज बेटर, इजंट इट. सो गॉड थ्रू द एजेंसी ऑफ मेटीरियल नेचर विल गिव यू दैट बॉडी. सो अल्टीमेटली यू सेलेक्ट बाय यूजिंग योर फ्री विल. हम सबकी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है, जीवन की, आत्मा की स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है. उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति के द्वारा हम एक प्रकार की बॉडीज को सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप दुकान पे आते हैं, बहुत सारे अलग शूटिंग सेटिंग्स, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे। नाउ ऑन व्हाट बेसिस यू कम आउट विद ए पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लोथ, ऑन व्हाट बेसिस? यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? नाउ दिवाली इज कमिंग, यू आर गोइंग इन ए क्लोथ शॉप एंड यू कम आउट विद ए पर्टिकुलर शर्ट एंड पैंट। ऑन व्हाट बेसिस इट डिपेंड्स that one person is coming with this pant and shirt, another person is coming with different pant and shirt, purchasing, on what factor it depends? No, answer my question. ये किस बात पे डिपेंड करता है वो? इस केस में शॉप में से दो आदमी निकल के आ रहे हैं, his choice, only choice, a choice means desire, suitability and मनी, यू नो, यू हैव टू सी योर पॉकेट हाउ मच इट अलाउज यू, करेक्ट। सो योर एबिलिटी टू परचेज एंड योर डिजायर बेसिकली गवर्न। तो उसी प्रकार से यहां पर इस भौतिक जगत में बहुत सारे अलग अलग ड्रेसेस हैं, मनुष्य का शरीर है, जानवर का शरीर है। नाउ अकॉर्डिंग टू योर डिजायर एंड योर डिजर्विंगनेस, डिजायर एंड डिजर्विंगनेस, यू आर प्रोवाइडेड विद ए पर्टिकुलर बॉडी एंड इन दैट बॉडी देन यू फील certain happiness, certain distress. If you are in a body of bird, you feel very happy in flying. If you are in a body of human being, you feel distress, anxiety when you are flying. So according to body, then you have a certain happiness and certain distress. यस, हमारी इच्छा के अनुसार और हमारे कार्य के अनुसार हमको अगला शरीर मिलना है। यस मीन्स यू हैव सम अदर ऑप्शन, यू हैव सम अदर आंसर, देन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बॉडीज एंड डिफरेंट थिंग्स। सो
Yeah,
everything is a purpose, of course.
That is. But it is regarding the other reference that man cannot replace a man machine. Instead of man, the machine cannot handle the problem. But Lord Krishna had done this earlier. In the case when Brahmadev has kidnapped cows and the friends of Krishna, Lord Krishna, and at that time, when Brahmadev was moving, there's some calculation of speed of Brahmadev also.
मतलब नटशेल वो कहना चाह रहे हैं कि शरीर जो है, मशीन जो है, वो रिप्लेस नहीं कर सकती। तो लेकिन ये तो भगवान कृष्ण ने करके दिखाया है कि मशीन रिप्लेस की, कि उन्होंने सब गाय चुरा ली ब्रह्मा जी ने और भगवान ने वो सब के सब वैसे ही कर दिया। तो भगवान ने सब वैसे के वैसे कर दिया, भगवान खुद अपने को एक्सपेंड किए उन सब गोपियों के उसमें। दे वर नॉट मशीन्स, दे वर नॉट मशीन्स।
But expansion, if I cannot do this without my hand, if I am giving my hand to him, then it would be instead of that here expanded.
But what do you mean by that expansion? Krishna is not having a machine. Krishna is not made up of machine. Krishna is spirit, all spirit. उनका हमारे ऐसा नहीं है कि हमारा एक शरीर है और एक आत्मा है। भगवान का ऐसा नहीं है। Everything is, Krishna is whole spiritual. So when he expands, it is not that it's a machine which he made. It is the whole spirit. They are all Krishna. They are all just Krishna in expanding in different forms. Krishna in वो हर गाय के रूप में, it's Krishna himself. It's not the machine which
is. We also have spirit, so we can also expand ourselves.
No, we don't have that capacity.